आपने सीखा कि हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर बात में, हर समस्या में, हर संघर्ष में आपके पास एक ही हथियार है और वो है परमेश्वर का वचन। इस पूरे हफ्ते आपने करके देखा होगा, तलवार उठाई होगी आपने। मैं इसलिए ये पूछता हूँ क्योंकि हम धोखे में ना रहे कि भाई हम चर्च जा रहे हैं और वचन भी सुन रहे हैं और हमारे पास बाइबल्स भी है और हम घर पे भी बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब वचन इस्तेमाल करने का वक्त आए और हम उसको ना करें और हम धीरे धीरे ठंडे हो जाए प्रभु में और हमें फ़र्क ना दिखाई दे यीशु मसीह के पीछे चलने में और दूसरे ईश्वरों के पीछे जो हम पहले चलते थे उसमें, फिर हमें फ़र्क नहीं दिखेगा और प्रभु के प्रति जो प्यार है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और हमें और अविश्वासी में कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, अगर आपने उद्धार पाया है, आपको मुक्ति मिली है, यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु माना है तो आप स्वर्ग जरूर जाएंगे, ये नहीं कि आप रह जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके क्या करेंगे आप? वहाँ जाके भी आप ऐसे ही रहेंगे ना जैसे यहाँ पे आप रहते थे। और यहाँ पे कितनी लंबी आयु है हमारी? 120 साल, सबको याद है। वहाँ पर कितने साल के हैं? कितने साल? वो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। 120 साल तो कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक है, छुटकारा मिल जाएगा शरीर से, लेकिन वहाँ पर अनंत जीवन है। उस जीवन में आप ऐसे रहेंगे जैसे यहाँ पे थे। यीशु मसीह में विश्वास करने से या इस बात को मानने से व्यक्तिगत तौर पर कि हम पापी है, अभी नहीं, पहले हम थे, अभी नहीं, ठीक है, मैं नहीं हूँ, आपके बारे में आपको पता है, ठीक है, मैं पाप करता हूँ लेकिन मैं पापी नहीं हूँ, फ़र्क क्या है? वो जो लेबल लगा हुआ था ना मेरे नाम, मेरे गले में टंगा हुआ था ना, वो हटा दिया परमेश्वर ने। मैं पापी नहीं हूँ लेकिन पाप होता है मुझसे या करता हूँ, तो पापी होने का जो दाग मुझ पर था वो हटा दिया परमेश्वर ने और एक मोहर लगा दी। कौन सी मोहर है? ठीक है, पवित्र या संत। संत लोग हम हैं, हमारे नाम के नाम से पहले हम मिस्टर या मिसेस या मिस या जो भी हम लगाते हैं उसे, उसकी जगह पे हम संत लगा सकते हैं। विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, संत गौरव है ना, अंग्रेजी में सेंट गौरव। तो आपकी बाइबल्स में आप जो देखते नहीं है गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, तो वो क्या हमसे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊंचे इसमें थे क्या? उस ज़माने में क्यों लोग लिखते थे सेंट जॉन अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन? तो सिर्फ यूहन्ना ही संत था, बाकी सब विश्वासी ऐसे ही थे। इसका मतलब उस पहले जमान या पहले शताब्दी के विश्वासियों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी, वो इस बात को समझते थे, इसलिए अपने नाम के पहले वो सेंट लगाते थे। तो जितनों ने यीशु मसीह पर इस तरह से विश्वास किया कि वो पापी है और यीशु मसीह उनको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, उन सबको उद्धार मिल चुका है, यानी अनंत जीवन में वो जाएंगे, गारंटीड है। आपको अनंत जीवन को लेके सोचने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस बात को, इस शर्त को पूरी की है तो। फिर आपको किस बारे में सोचना है? मैं अनंत जीवन में कैसे रहूँगा, कैसे जीवन बिताऊँगा, इस बारे में सोचना है, यानी वहाँ जाने की तैयारी करनी है, वहाँ पर रहने की, जाने की तैयारी मत करिए, सॉरी। बात यह है कि जब हम ऊपर पहुंचेंगे ना अनंत जीवन में, जब हम सारे होंगे तो मुझसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ, कि नहीं तो मैं आपको हर संडे हम में से कोई भी कुछ शानदार तरीके से वचन सुनाए और चले जाए। वचन सुनाना काफ़ी नहीं है, फिर क्या करना चाहिए? मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय का कौन सा पद में यीशु मसीह ने आखिरी आदेश या आज्ञा दी थी अपने चेलों को? शायद 19वां पद में है, पढ़ के देखिए। उसमें यीशु ने कहा था कि जाके जादी जादी के लोगों को चेले बनाओ, वो सबको याद रहता है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे चेला बनाना है वो भी प्रभु ने बताया कि उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो भी याद रहता है सबको। लेकिन उसके बीच में एक और बात है, तो बपतिस्मा तब देते हैं ना जब आपने प्रभु के बारे में उनको अच्छी तरह बताया हो और उनको ये कहा था कि और जिन बातों के लिए मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ। ये नहीं कहा कि उनको सिखाओ, कि मेरी सारी आज्ञाएं उनको सिखाओ, वो आसान है। आज्ञा नंबर एक, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ के और किसी को नहीं मानना, ये सिखा के छोड़ देना काफ़ी है। ये नहीं कहा कि उनको सिखाओ, उनको मानना सिखाओ। मानना कैसे सिखाएंगे? खुद मानेंगे, और मेरे खुद मानने से आप सीखेंगे, दूसरों को बताने से सब लोग मान लेते हैं। तो देखना पड़ता ना कि वो मान भी रहे हैं कि नहीं। आप जो सड़क पार करते हैं, सड़क पार करते हैं ना, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर सुनिश्चित कर लिया कि गाड़ी नहीं आ रही है, या गाड़ी आ भी रही है तो ज़्यादा स्पीड में नहीं है, फिर आप सीधा सड़क पार करते हैं, ऐसे ही करते ना। और ये आपने कब सीखा था? बचपन में सीखा था, गूगल में देखा था। कैसे सीखा था? किसी ने सिखाया था, बड़े भाई बहन ने या माता पिता, किसी ने सिखाया था। और कैसे सिखाया था? उन्होंने गूगल मैप में दिखाया था कैसे चलना, नहीं, उन्होंने हाथ पकड़ के आपसे करवाया, और आप हाथ छुड़ा के भागना चाहते थे, नहीं नहीं मैं अकेले कर सकता हूँ, नहीं 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 अभी मेरे साथ चलो। कई बार कराने के बाद उनको जब तसल्ली आई कि अब ये अकेला कर सकता है, तब उसको करने, हमें करने दिया। हमें मानना सिखाया ना, सड़क पार करना सिखाया, मानना नहीं, सड़क पार करना सिखाया। और आज भी आप ऐसे ही करते हैं, क्या सबूत है? क्या आप यहाँ बैठे हैं? अगर आप ऐसे नहीं सड़क पार कर रहे होते तो यहाँ नहीं होते। कहाँ होते? हॉस्पिटल में होते, या आप आज भी करते हैं, है ना? और जब आपने ऐसा नहीं किया तो नुकसान उठाया है। इसी तरह चर्च में भी सिखाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो मानना सिखाए। तो इसलिए मैं ये सब करता हूँ, इसलिए मैं नई टीचिंग्स ना देके पुराने टीचिंग्स के बारे में पूछता हूँ कि क्या आप कर भी रहे कि नहीं, नहीं तो हम सब धोखे में रहेंगे। बुजाने सिखाया था कि हमारे पास एक हथियार है, हर लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए एक ही हथियार है, और वो है परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार थोड़ी सी खतरनाक तलवार है, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आप दुश्मन को तो हरा ही लेंगे आप, लेकिन उस समय वो आपको भी थोड़ा सा चीरा लगाएगा, जो हम नहीं चाहते। तीसरे पत्री में चलते हैं और उन चीज़ों को फिर से देखते हैं, ग्यारहवा पद में लिखा है। और इन सब बातों को समझने के लिए हमें एक हेल्पर की हेल्प चाहिए, है ना? हमारे पास एक अच्छा श्रेष्ठ सहायक है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। तो एक बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, और हम ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही करेंगे, इसके बाद हम इस पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर से कि हमें समझ जाए ये बातें जो हम अभी सुनने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र शास्त्र दिया है, और इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। इसलिए हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि हमारे आँखों को खोलना, हमारे हृदयों को खोलना प्रभु, कि हम तेरी बातों को समझ सकें और ग्रहण कर सकें, और प्रभु हमें अनुग्रह देना कि हम उन बातों पर चल भी सकें, उन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें, और अनुभव से ये जान सकें कि तेरा वचन अटल है, और तेरा वचन में सामर्थ है, और तेरा वचन वैसे ही काम करता है जैसे तूने कहा है कि वो काम करेगा। ये हम अनुभव से जान सके प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो 11वां पद में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये तो समझ आता है, एक युद्ध है, और इस युद्ध में शैतान का सामना करने के लिए हमें हथियार की जरूरत है, और इसमें काफी सारे, देखा जाए तो इसमें 7 हथियारों का नाम है, जिनमें से एक के विषय में पूजा, पास्टर पूजा ने सिखाया था, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। सारे हथियार को या सारे हथियार बांधने के लिए कहा है, और 12 पद में से भी पास्टर पूजा ने आपको सिखाया था, क्योंकि हमारा एक मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध आप जानते हैं, समझते हैं, साधारण भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, कुश्ती, लेकिन वो वाली कुश्ती नहीं जो आज हम देखते हैं। आज के ज़माने में जो कुश्ती हम देखते हैं वो एक मैच है, एक गेम है, एक खेल है। एक को जो जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, उसको सोने वो ट्रॉफी हो या मेडल हो, तो गोल्ड का सोने का मेडल मिलेगा, और जो फाइनल में हारेगा उसको भी कुछ मिलेगा, चांदी का मिलेगा। चलो गोल्ड नहीं मिले तो भी चांदी मिला, ठीक है, लेकिन वो एक खेल है। ये मल्ल युद्ध जो है खेल नहीं है, ये असली युद्ध है, और इसमें जो हार जाता है वो हार जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए इस मल्ल युद्ध में, और मल्ल युद्ध का मतलब क्या है, इस युद्ध में आपके साथ और कोई नहीं है, आपके साथ देने के लिए और कोई नहीं है, आपको खुद को लड़ना है, इसलिए मल्ल युद्ध है। प्रार्थना में आपके साथ देने के लिए पूरी चर्च है, लेकिन ये लड़ाई जो आप लड़ेंगे शैतान से, आप स्वयं लड़ेंगे, इसलिए मल्ल युद्ध है, रेसलिंग अंग्रेजी। लेकिन ध्यान रखना, ये वो वाली कुश्ती नहीं है जो हम एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में देखते हैं, वो नहीं है ये, क्योंकि वो तो खेल है, ये असली लड़ाई है। एक हारेगा और एक जीतेगा, और हम हारने वालों के साइड में या लिस्ट में नहीं आना चाहेंगे ना, हमें जीतना है। जीतने के लिए सही रीति से लड़ना होगा, सही हथियार को इस्तेमाल करना होगा, और पास्टर पूजा ने सिखाया था कि आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पे ये भी बताया है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लघु और मान से नहीं, यानी मनुष्यों से नहीं, खास करके विश्वासियों से नहीं, कारण आप जानते हैं मसीह जीवन की आधा समय जो है दूसरे विश्वासियों से लड़ते लड़ते हम खत्म करते हैं, लेकिन उनसे नहीं है हमारी लड़ाई। लड़ाई किससे है, इसमें लिस्ट है, प्रतानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मैं किसी दिन आपको इस बारे में अध्ययन शिक्षा दूंगा। जब हम केनिया में थे, परमेश्वर ने मुझे सिखाया था, जब मैं वहाँ पास्टर्स के मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में पास्टर्स को समझा रहा था, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, प्रधानता हो और अधिकारी, फिर दुष्टता की आत्मिक सेना, इस युग के अंधकार के हाकिम। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको एक प्रथा है, सबसे पहले एक पास्टर आके प्रार्थना करेंगे और उन प्रधानताओं को और अधिकारियों को सबको नोटिस देंगे, ऐलान करेंगे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है, और ये सब बोलते हैं, सुन के अच्छा लगता है। आप लीगल नोटिस देंगे, मतलब ऐलान करेंगे, ये सब अच्छी बातें हैं। तब प्रभु ने मुझे सिखाया, बताया कि ये प्रधानता जो है और ये अधिकारी जो है, ये बड़ी बड़ी हस्ती है, मजाक नहीं है, पूरे देश पर या पूरे एक शहर पर राज करने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, ये मजाक नहीं है इनको छेड़ना या इनके खिलाफत करना या इनके विरोध में खड़ा होना। क्या होता है कि हम इनके खिलाफ बोलते हैं और हम सोचते हैं कि हम जीत गए, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो लोमड़ियाँ, छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हमारे दाग के बारी को, विनयर्ड को खराब करती है, बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लेना। आज के ज़माने में दिल्ली शहर में तो दाग की बारी नहीं है, किसी भी तरह की खेती हो, खेती तो आपने देखा है, खेत भी देखा है, तो अगर आपको, आप जानवरों को जैसे यूपी में जाए, नील गाय को रोकने के लिए वो बाड़ा लगाते हैं खेत में, तो नील गाय को तो आप रोक सकते हैं क्योंकि आपने, वो अंदर घुस नहीं सकती, आपने बाड़ा लगाया, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो है नीचे से घुस सकती है। आपने जो लोहे का जो बार्ब्ड वायर्स होता है ना, कांटेदार तार जो बांध के रखते हैं, तो उससे तो आप नील गाय को रोक सकते हैं या बड़ी लोमड़ियों को रोक सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो है उसके नीचे से घुस जाएंगी और वो आपकी दाखलताओं को खराब करेगी। तो हम बड़े बड़ों से फाइट करने के लिए, उनका नाम लेके उनको, उनसे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो घुस जाती है उन पर ध्यान नहीं देते। तो उनके बारे में सीखना अच्छा होगा ना, वो कैसे घुस जाती है और कहाँ से घुसती है, तो उसके बाद हम बड़ों से लड़ सकते हैं, नहीं तो हम बड़ों से लड़ते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें हमारे, क्योंकि खास करके, और ये जो बात है, ये जो शिक्षा है, ये कहाँ पर है, ये श्रेष्ठ गीत में है। श्रेष्ठ गीत का मतलब क्या है, श्रेष्ठ गीत वो है ना जो लव सॉन्ग, जो बाइबल में है, एक किताब है ना, छोटी सी किताब है, लव सॉन्ग, उसमें है, जहाँ प्यार की बातें चल रही है वहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन देखो, ध्यान रखो, क्योंकि हमारे दाखलताओं में फूल लगे हैं, फल लगने वाले हैं, फूल लगे हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रूट, फल आने वाला है। उससे पहले उसको ख़राब ना करें, अभी तक सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंतिम अंत क्या होना चाहिए, हमें फल दिखना चाहिए, फूल लगना काफ़ी नहीं है। और फूल अगर गिरा दिया गया तो क्या होगा, फल नहीं लगेंगे। तो छोटी छोटी लोमड़ियों पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर छठा अध्याय में लिखा है, इसलिए चौदहवा पद में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाहों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उदार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और भी एक हथियार है 18वें पद में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो ये 7 हथियार है। अब मैं 14वें पद पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। 14वें पद में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के रखना। आत्मा की तलवार के विषय में पास्टर पूजा ने सिखाया, इसलिए मैं नहीं सिखाऊंगा आज। ये सत्य से कमर को कसने के लिए कहा है, इसका मतलब क्या है, बेल्ट टाइट बांधने के लिए कहा है। जो लोग पैंट्स पहनते हैं, खास करके पैंट्स, अगर ट्राउजर्स ढीली हो और बेल्ट आपने टाइट नहीं किया तो आपको पता है कि क्या होगा, पकड़ के रखना पड़ेगा ना, ऐसे चलते हुए पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना। ये हकीकत नहीं है क्या, ऐसा होता है ना, बीच बीच में ऊपर करना पड़ता है। अगर आपने बेल्ट को टाइट कर दिया तो फिर आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सत्य से कमर कसने के लिए कहा है। सत्य क्या है, सत्य यीशु मसीह है। और क्या है, परमेश्वर का वचन को भी सत्य कहा गया है। योहन्ना का सुसमाचार का 17वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि सत्य से इनको पवित्र कर, शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। तो आपके पास जो बाइबल है वो सत्य है। अब आपके पास दो हथियार हैं जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार भी परमेश्वर का वचन है, लेकिन ये बेल्ट जो है जिसको कसने के लिए कहा है वो भी परमेश्वर का वचन है। तो इसका मतलब दो हथियार हैं जो कि परमेश्वर के वचन से ही है, ऐसा है। तो फिर दो बार परमेश्वर ने क्यों कहा, आत्मा की तलवार तो समझ आती है, तलवार उठाई और आपने दुश्मन को मारा, वो समझ आता है। लेकिन सबसे पहले जो हथियार हमें बताया गया है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ में जो हथियार बताया गया ना, ये पहली शताब्दी के अनुसार है। आज के भाषा में अगर कहते हैं तो AK-47 और इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता, क्योंकि आज कितने लोग तलवार से लड़ते हैं, कोई नहीं। कितने लोग भाला लेके लड़ते हैं, कोई नहीं। आजकल राइफल्स होते हैं, शॉर्ट गन्स होते हैं, पिस्टल और रिवॉल्वर और क्या है, रॉकेट लॉन्चर, ये सब होता है। तो आज के ज़माने में अगर परमेश्वर वचन में लिखवाता तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता जो आज के ज़माने के लोगों को समझ आता है आसानी से, जो दिखते हैं। लेकिन उस ज़माने के लोगों को ये बातें समझ आती थी क्योंकि वो देखते थे उन हथियारों को जो उस समय के लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये जिलम, आप अगर म्यूज़ियम में जाएंगे, इंडिया हिंदुस्तान के किसी म्यूज़ियम में जाएंगे, वहाँ पर आपको जिलम दिखाई देगी जो ऊपर से पहनते थे, यहाँ से पूरे गले से लेके कमर के नीचे तक, घुटने तक झिलम, या कम से कम कमर तक, जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था आपको दिखाई देगा। लेकिन वचन लिखने वाला और लिखवाने वाला, या खास करके लिखने वाला, हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान के झिलम को नहीं देखा। उसने कहाँ के झिलम को देखा होगा, उसने रोम के झिलम को देखा होगा, क्योंकि इसराइल भी और पूरा यूरोप उस समय रोम के साम्राज्य के अधीनता में थे। इसलिए वहाँ पे रोमी सैनिक जो झिलम इस्तेमाल करते थे और जो तलवार इस्तेमाल करते थे, उनके अनुसार लिखा गया है। तो तो सत्य से कमर कसने के बाद ही आप उन बाकी हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सत्य जो है, जो कसने के लिए कहा है, वो बेल्ट है आपकी, साधारण भाषा में। तो इस बेल्ट को आप कसने के बाद बाकी जितने भी हथियार हैं इस बेल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तलवार जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो कहाँ में रखते हैं आप? उस बेल्ट में लटका के रखते हैं। आपकी जिलम जो है, अगर जिलम पूरी सही रीति से अगर काम करना हो तो जिलम आपके जो, इसको क्या बोलेंगे, शील्ड, ये टाइट रहना चाहिए। उसको बांधते हैं आप अपनी बेल्ट में, बेल्ट में हुक्स है उसमें फंसा के रखते हैं, ताकि जिलम, अगर जिलम ऐसा लटका रहेगा तो तलवार कोई मारेगा तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए जिलम को टाइट रखना है। सिर्फ टोपी है जो आप लगा के रखते हैं सर पे, लेकिन जब आप टोपी सर पे नहीं लगाए होते तो उसको कहाँ पे रखते हैं? वो भी अपने बेल्ट में टांगते हैं, क्योंकि जब युद्ध के लिए तुरही फूकी जाती है आप भाग के अपने कमरे में जाके सारे कबर्ड्स खोल के नहीं देखेंगे मेरी टोपी कहाँ पर है, पास होना चाहिए। तो जितने भी इस हथियारों को आप देख रहे हैं ना, शील्ड जो, ये तो कवच, सॉरी एक कवच हुआ और दूसरा ढाल जो है वो कहाँ पे रखेंगे आप? वो भी अपने बेल्ट में ही टांगते हैं। तो इसलिए बोला है कि सत्य से कमर को कस के रखो, क्योंकि बाकी सारे हथियार, जितने भी हथियार इसमें है, बाकी कितने हैं? 7 हथियार है, 18 पद को मत भूलना, उसमें एक हथियार है प्रार्थना। ये सारे हथियार जो है इस एक हथियार में से है, और वो है परमेश्वर का वचन। तो फिर वो क्या हुआ, जो आत्मा की तलवार है जिसको इस्तेमाल करने के विषय में पास्टर पूजा ने सिखाया, वो कौन सा वचन है? वो वचन उस समय के अनुसार, यानी उस परिस्थिति के अनुसार, या उस खास युद्ध के अनुसार जो वचन आपको चाहिए वो इस वचन से निकलेगा। जैसे आपको जब चंगाई की जरूरत है तो आप कौन सा वचन को इस्तेमाल करेगा? धन के विषय में जो बातें परमेश्वर के वचन में, वो तो नहीं इस्तेमाल करेगा ना, क्योंकि उस समय आपको धन की जरूरत नहीं, आपको शारीरिक या मानसिक चंगाई की जरूरत है। तो आप कौन सा वचन इस्तेमाल करेंगे? जैसे अभी सिस्टर अर्चना ने बोला ना कि उसके खोड़े खाने से मैं ठीक हो गई हूँ, तो वो वचन जो तलवार है वो कहाँ से निकला? इस पवित्र शास्त्र में से निकला। तो इससे, इस किताब को बेल्ट बनाने के लिए नहीं कहा गया है कि इसको पिघला के आप बेल्ट बनाओ और बांधो। ये वचन उस बेल्ट के समान आपके कमर में, जैसे बेल्ट को हम कमर में कसते हैं ना, वैसे ये जो कमर शब्द है ना, बहुत खूबसूरत शब्द है, क्योंकि आपको किसी भी काम करने के लिए, जो क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग सब, ठीक है, आप मुझे सोच के बताना, क्रिकेट चाहे आप बॉलिंग करें या बैटिंग करें, आप जोर कहाँ पे लगाते हैं? सोच के बताइए, एक बार खड़े होकर करके देखिए, आपका जोर कहाँ लगता है? कमर पे लगता है। अगर कमर में जान नहीं है तो आप ना तो बॉलिंग कर सकते हैं ना बैटिंग कर सकते हैं। आप किसी भी काम करने के लिए अगर आप कमर से बिल्कुल पैरालाइज हो गए हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में, हाथ पैर उठा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। कुछ भी काम करने के लिए आपके कमर में जान होना चाहिए, बल होना चाहिए। इसलिए कमर उस जगह को, शारीरिक रीति से कमर इस कमर के लिए है, लेकिन जब परमेश्वर कमर बांध कसने के लिए कहता है, आपके मन के लिए, क्योंकि आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन से अपने मन को खसने के लिए कहा है। ये वचन अगर आपने पढ़ा हो और आपने मन में भरा हो तो ही समय आने पर, युद्ध के समय में, परिस्थितियों में आप सही वचन को इस्तेमाल कर सकेंगे, तब उसमें से आप तलवार निकाल सकेंगे। अगर ये वचन मन में नहीं भरा है तो आपके पास तलवार नहीं होगी। अब समझ में आया क्या? बाइबल पढ़ना जरूरी क्यों है? इसलिए बदन सहित 119 का 11वां पद पढ़िए, देखिए दाऊद एक बात कहता है। बदन सहित 119, Psalm 119:11, वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है, यानी छुपा दिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। तो इस वचन को अपने मन में इस तरह से छुपाना चाहिए ताकि उसको कोई ना चुराए, और वो छुपाने का मतलब ये भी है कि मैंने उस वचन को कीमती जान के उसे, आप सस्ती और घटिया चीज़ों को छुपा के नहीं रखता ना। आप अपने अपने घर में या अपने बैंक के लॉकर में क्या चीज़ रखते हैं मत बताना क्या क्या है आपके पास, मैं पूछूंगा नहीं, बट आप अपने कीमती चीज़ें रखते हैं ना, घर के डॉक्यूमेंट्स और सोना और हीरा जो भी है ना, नकली जो आप नेकलेस ले आया 10 रुपये में, वो तो नहीं ला के रखते ना अपने लॉकर में, क्यों? उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको तो ऐसे ही फेंक देते हैं क्योंकि 2 महीने के बाद उसका रंग उतर जाएगा, फिर इस्तेमाल ही नहीं होगा ना, आपको पता है। लेकिन जो असली है उसको आप कहाँ रखेंगे? संभाल के रखेंगे ना, उसको बहुमूल्य जानकर आप छुपा के रखते हैं। कैसे छुपा के रखते हैं? बोलिए बोलिए जो मैंने अभी बोला, उसको बहुमूल्य जानकर, उसको कीमती जानकर, यू ट्रेशर इट। तो ये जो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, पढ़िए, वैसे हिंदी में किसी ने पढ़ा नहीं है ना, पढ़िए एक बार। ये जो रख छोड़ा ना, हम हिंदी में पढ़ते तो रख छोड़ा है, ठीक है, अब थोड़ा समय लेके पढ़िए, पवित्र आत्मा समझ देता है। ये जो रख छोड़ा ना, इसका मतलब है कि मैंने उसको छुपा दिया, उसको मन में छुपा दिया ताकि चोर उसको ना चुराए, क्योंकि मेरे लिए वो कीमती है। I treasured your word. तो इसलिए पवित्र शास्त्र हमें पढ़ने की, अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारे हृदय में ऐसे बस जाए कि जब ज़रूरत पड़े तो हमारे मुँह से और हमारे सोच में परमेश्वर का वचन हो, वो है तलवार। तो पिछले संडे पास्टर पूजा ने आपको तलवार चलाना सिखाया, आज मैं आपको बता रहा हूँ तलवार आएगा कहाँ से, मतलब तलवार आएगी कहाँ से। तलवार को हमेशा लटका के रखना चाहिए ना, ये नहीं कि तलवार की जरूरत पड़ी ढूंढे कहाँ पर है, कौन से कबर्ड के अंदर छुपा के रखे, नहीं, यहाँ पे बेल्ट पे होना चाहिए। तो बेल्ट हमेशा खस के रखना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने से मुझे पता चला कि रोमी सैनिक जो होते थे हमेशा अपने सारे हथियार लेके सोते थे, जूते पहन के सोते थे, क्योंकि तुरही जो है कभी भी फूकी जा सकती है, सब समय नहीं होता, सारे हथियार, टॉप कहाँ, टोपी कहाँ है भाई मेरा, वो कहाँ है, ढाल कहाँ पर है, सब कुछ अपने बेल्ट के साथ होता था। अब मुझे नहीं पता है कि ये सब पहन के सोता कैसे था, मुझे नहीं पता, बट उसके पास सब कुछ तैयार होता था, उठा के बेल्ट में टांग दिया, निकला बाहर को सारे पूरे सुसज्जित होकर। आज सिर्फ हम इस उस बेल्ट को कसने के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाली बेल्ट नहीं, ये तो कसना आपको आता है, लेकिन वचन रूपी उस बेल्ट को, उसको हिंदी में क्या पट्टा बोलते ना, उसको अच्छी तरह खस के रखना है अपने मन में। आपके मन में, आपके मन के अंदर परमेश्वर का वचन इस तरह से होना चाहिए कि जब भी कोई समस्या हो जीवन में, जब भी कोई ज़रूरत हो, जब भी कोई लड़ाई हो, आत्मिक लड़ाई, आपके पास उस लड़ाई का या उस परिस्थिति का सामना करने के लिए उचित वचन आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए, आपके मन के अंदर। उस समय बाहर के जाके बाइबल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, उस समय बाहर के जाके बोलेंगे वो आपके, क्योंकि वचन को जरूरी है कि आपके मन में वो जड़ पकड़े, आपके विचारों में वो वचन घूमना शुरू करे, उसमें समय लगता है। हम लोग रेडीमेड सॉल्यूशंस ज़्यादा इंटरनेट पे गूगल किया, वचन मिला, ठीक है मैंने वचन ढूंढा, काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी वो कसा नहीं है ठीक से, उससे पहले कैसे काम करेगा, तलवार के रूप में काम नहीं कर सकता वचन। इसलिए इस वचन को पढ़ना ज़रूरी है और उसको मन में बसाना ज़रूरी है। पढ़ना काफ़ी नहीं है, पढ़ने से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको मन में बसाना है कि ये परमेश्वर का वचन है। आप कभी कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च गए हो तो आपको एक चीज़ मिलेगी, एक चीज़ वहाँ पे अच्छी मिलेगी, वो बाइबल गॉस्पल में से किसी भी एक अध्याय में से पढ़ेंगे, कोई पढ़ के सुनाएगा, उसके बाद एक बात बोलते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। हम लोगों को भी ऐसे पढ़ना चाहिए, ये बाइबल पढ़ने के बाद अपने आप को बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, तो हर रोज़ आप करेंगे ना, बाइबल पढ़ने के बाद आपको अपने आप को बताना है कि भाई ये परमेश्वर का वचन है, ये कहने का मतलब ये परमेश्वर कह रहा है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया नहीं कह रहा है, आपके पास BSA की बाइबल होगी ना, तो वो नहीं कह रहा है आपको, ये परमेश्वर कह रहा है। इस तरह से वचन को पढ़ना चाहिए। इसलिए आपको कोलोसियों की पत्रिका 3:16 में मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है तुम्हारे हृदयों में बहुताय से बसने पाए। ये मेरा वर्षन है, आप अपने वर्षन में देख लेना कैसे लिखा है। यीशु मसीह का वचन, मसीहा का वचन, परमेश्वर का वचन आपके हृदयों में या मनों में बहुताय से बसने पाए। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो, ऐसे लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल इन यू रिचली, यानी कंजूसी के साथ नहीं, इफरात से डाल के रखो ताकि हर परिस्थिति में, हर जरूरत में आपके पास सही तलवार हो। ऐसे लिखा ना, इसलिए चाहे आप पुराने में देखो या नए नियम में देखो, हर जगह विश्वासियों को शुरू से लेकर आखिर तक एक ही आदेश, एक ही वचन को अपने मन में बसा के रखो। जोशुआ से प्रभु ने कहा था कि व्यवस्था की ये किताब तुम्हारे चित्त में से हटने ना पाए, ये कहा ना, तुम्हारे चित्त में से, तुम्हारे हृदय में से हटना नहीं चाहिए, दिन रात उस पर ध्यान लगाना। इसका मतलब ये नहीं था कि 24 घंटे वचन के बारे में सोचो, कहने का मतलब है कि उस पर इतना ध्यान देना कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे पास वो वचन हो लड़ने के लिए। कभी समय निकाल के उसको पढ़िएगा, यहोशू की पुस्तक में जोशुआ चैप्टर 1:8, पहला अध्याय में 8वें पद को पूरा पद को पढ़ना। उसमें परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, हर काम में सफलता मिलेगी। वचन को बसाना चाहिए, वचन को सिर्फ पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी, उसको बसाना है। उसको कैसे, क्या जानकर उसको अपने हृदय में छुपाना है आपको, उससे पहले मैंने कुछ बोला था, उसको बहुमूल्य जानकर और परमेश्वर का वचन जानकर उसको हृदय में बसाइए, तब वो काम करेगा, तब आप शैतान का सामना कर सकेंगे, तब आपको, आपके पास हर परिस्थिति में, हर युद्ध में, हर लड़ाई में, हर जरूरत में, हर परेशानी में आपके पास उचित तलवार होगी, यानी उचित वचन होगा। जब आपको पैसे की ज़रूरत है, जब आपके जेब में पैसा नहीं है, नौकरी चली गई, तब ये वचन इस्तेमाल करना उचित होगा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से, वो वचन तो काम नहीं करेगा ना, वो तो चंगाई के लिए है। तो आपके पास हर परिस्थिति का वचन या वचन रूबी तलवार होना चाहिए। उसके लिए आप वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल की बातों को अपने हृदय में बसा के रखेंगे और अपने आप को ये याद दिलाते रहेंगे। क्या याद दिलाएंगे? कि ये परमेश्वर का वचन है। तो आज के बाद जब आप बाइबल पढ़ेंगे ऐसा प्रैक्टिस करना, ठीक है? रोज़ जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, अपने आप को कहना कि ये परमेश्वर का वचन है। थोड़े समय ऐसा करने के बाद आपको याद रहेगा, फिर आपको, आपके, आप पढ़ते समय आपको याद रहेगा कि मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल सोसाइटी का वचन नहीं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बाइबल सोसाइटी का वचन पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा वचन पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन को हृदय में बसाएंगे तो वो काम करेगा और आपके पास हर समय में ज़रूरत के अनुसार तलवार होगी और आप लड़ाई में जीतेंगे।